प्रिय श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों यशाया नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि भविष्यवाणी अलग अलग रूप में यशाया के द्वारा दी गई है। तो मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया है। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि आज हम जो कुछ भी सुनते और सीखते हैं निश्चित रूप से हमें से प्रत्येक के जीवन के लिए लाभकारी हो सके। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं या किसी प्रकार के दबाव में हैं। प्यार परमेश्वर, आप उन्हें अपनी शांति और धीरज प्रदान करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 4 से देखेंगे। अध्याय 4 भी उसी भविष्यवाणी का भाग है जो अध्याय 2 से आरंभ हुई है। इसका विषय है बेबीलोन की बंधुआई के समय की परिस्थितियां और प्रभु के राज्य की स्थापना के समय की परिस्थितियां एक सी ही रहेंगी। अध्याय 4 वास्तव में यशाया की संपूर्ण पुस्तक का सारांश है, क्योंकि वह यहां उन सब विषयों का सार प्रस्तुत करता है जिनकी चर्चा वह संपूर्ण पुस्तक में करेगा। अध्याय 4 पुस्तक का सबसे छोटा अध्याय है, इसमें केवल 6 पद हैं। हमारे समक्ष यहां उन परिस्थितियों का वर्णन है जो बेबीलोन में इसराइल की बंधुआई के समय थी और महाक्लेश के युग में होंगी, अर्थात प्रभु के राज्य की स्थापना से पूर्व। इस अध्याय की रचना बड़ी सरल है, केवल पहला पद महाक्लेश या अंतिम समय की परिस्थितियों का वर्णन करता है, शेष अध्याय प्रभु के राज्य में प्रवेश करने की तैयारियां प्रकट करता है। यह अध्याय निसंदेह आशा का अध्याय है। तो आइए आप मेरे साथ यशाया 4 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ें। लिखा है, उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी, रोटी तो हम अपनी ही खाएंगी और वस्त्र अपने ही पहनेंगी, केवल हम तेरी कहलाएं, हमारी नाम धराई दूर कर। मेरे मित्रों, ये परिस्थितियां युद्ध में मरने वालों की भयानक दशा के कारण उत्पन्न होगी। युद्ध का परिणाम तो यही होता है और महाक्लेश के समय परिस्थितियां ऐसी ही होंगी। दूसरे शब्दों में, युद्ध के कारण पुरुषों की संख्या इतनी कम हो जाएगी कि स्त्रियों की बहुत अधिक संख्या होगी और 7-7 स्त्रियां एक पुरुष के साथ रहना चाहेंगी। मेरे विचार में उस समय स्त्रियां काम करेंगी और पुरुष उनकी आय का लेखा रखेगा। यह एक भयानक स्थिति होगी। द्वितीय विश्व युद्ध की दशा भी काफी कुछ ऐसी ही थी। यशाया 4 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, उसी समय इसराइल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी और भूमि की उपज बड़ाई और शोभा ठहरेगी। ध्यान दे, उसी समय अर्थात प्रभु के दिन। यशाया की पुस्तक में यह उक्ति बार बार आएगी, वरन सब भविष्यद वक्ताओं में आएगी। नए नियम में भी इसका उल्लेख होगा। यूएल इसका बहुतायत से उपयोग करेगा। यह दिन इब्रानी दिन की नाई संध्या समय आरंभ होता है और अंधकार के बाद भोर का आगमन होता है। इसका आरंभ महाक्लेश से होगा और सहस्त्र वर्षीय राज्य तक जाएगा। मेरे प्रियो, इस पद में प्रभु यीशु का भी संदर्भ है। वही तो डाली है। इब्रानी भाषा में 18 शब्दों का अनुवाद डाली किया गया है। ये सभी शब्द यीशु के प्रतीक हैं। यहां डाली का अर्थ है कोपल फूटना। आगे चल करके हम देखेंगे कि वह सूखी भूमि से उगने वाली एक डाली है, वह रेगिस्तान में फूटने वाली हरियाली है। यशाया 4 अध्याय के 3 पद में पढ़ते हैं, और जो कोई सियोन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में, जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हों, वे पवित्र कहलाएंगे। महाक्लेश में बचने वाले परमेश्वर के जनों में यहूदी और अन्य जाति दोनों ही होंगे। शहीद होने वाले निस्संदेह उस युग के समाप्त होने पर पुनर्जीवित हो जाएंगे। मत्तीरचित सुसमाचार में यीशु की बात कुछ विचित्र सी प्रतीत होगी, परंतु वह महाक्लेश के अंत को देखते हुए कह रहा था। मत्तीरचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 13 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। उन्हें महाक्लेश के पार लगने के लिए मुहर बंद किया जाएगा। चरवाहा अपने भेड़ों की सुरक्षा में सक्षम है, इस कारण वे अंत तक बची रहेंगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 7 में यहूदी और अन्य जातियों के समूह की चर्चा करता है, जिन पर महाक्लेश से पूर्व मुहर लगाई गई है और वे अंत तक बचे रहें। यशाया 4 अध्याय उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं, यह तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सियोन की स्त्रियों के मल को धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा। जकर्याह की पुस्तक 13 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर के लोगों को राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार रहना होगा। अब एक अति उपयुक्त प्रश्न उत्पन्न होता है। हम प्रति वर्ष नया वर्ष आरंभ होने पर कहते हैं कि हम इस वर्ष अधिक अच्छा काम करेंगे। हम वर्षों से यही कहते आ रहे हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आप आज स्वर्ग के योग्य हैं? मान लीजिए कि परमेश्वर आपको आज ज्यों का त्यों स्वर्ग ले जाए, तो क्या आप वहां के योग्य हैं? मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, परंतु परमेश्वर को मुझे स्वर्ग के योग्य बनाने के लिए बहुत सुधार करना होगा। यही जीवन है। जीवन हमें अनंत जीवन के लिए तैयार करने की एक पाठशाला है। अधिकांश जन बहुत बड़ी भूल करते हैं। वे सोचते हैं कि जीवन बस यहीं तक का है। अनंत जीवन की तैयारी इस पृथ्वी पर ही की जाती है। आप स्वर्ग में गोल सुराख में चौकोर खूंटा होंगे। मुझे डर है कि मैं भी ऐसा ही रहूंगा। मेरे प्रियो, अभी प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या होंगे। प्रभु को हम पर बहुत सुधार कार्य करना होगा। यशाया 4 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, तब यहोवा सियोन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा, और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। मेरे मित्रों, अंत में उस दिन इसराइल राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। आज इसराइल को शांति नहीं है। इसका अर्थ है कि अभी यह भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई है। यहूदी अभी अपने स्वदेश नहीं लौटे हैं, कि प्रत्येक यहूदी अपनी दाखलता और अंजील के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा होगा। ध्यान रखें कि शांति सदैव अनुग्रह, दया और शोधन के बाद आती है। समस्या राजनीति के दल या विदेशी शक्तियों के कारण नहीं है, समस्या तो मनुष्य के मन में है। हम युद्ध इसलिए करते हैं कि युद्ध हमारे मन में है। मनुष्य युद्ध करने वाला प्राणी है क्योंकि वह पापी है और वह इसका समाधान पाने से इनकार करता है। जब तक मनुष्य का मन परिवर्तन ना हो, युद्ध तो होते ही रहेंगे। मेरे मित्रों, यह क्या ही दुखद बात है कि आज हम अपने मन को फिराना नहीं चाहते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने मनों को फिराकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन यापन करें। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 4 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 5 में देखेंगे, जिसका विषय है दाख की बारी का गीत और 6 हाय। इस अध्याय के साथ अध्याय 2 से आरंभ हुई भविष्यवाणी का अंत भी होता है। इसके प्रथम 7 पद दाख की बारी का गीत है, जो इसराइल जाति के पाप और आने वाली बंधुआई का उल्लेख करता है। शेष अध्याय में 6 पापों के लिए 6 हाय है, जिनके कारण उन्हें परमेश्वर दंड देगा। प्रत्येक पाप का दंड स्पष्ट लिखा गया है। आइए देखें दाख की बारी का गीत। वे जो इब्रानी भाषा पढ़ते हैं बताते हैं कि यह एक सर्वोत्तम गीत है जो कभी लिखा गया हो। इसकी तुलना में अन्य कोई रचना नहीं है। यह एक ऐसी संगीत रचना है जिसे अंग्रेजी में प्रतिकृत नहीं किया जा सकता है। यह एक गीत है और किसी भी भजन के तुल्य है। दाख की बारी पद 7 दाख की बारी उन दो प्रतीकों में से एक है जो वनस्पति जगत से इसराइल के लिए चुने गए हैं। दूसरा प्रतीक है अंजीर का वृक्ष। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु से पूर्व मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 33 से 46 पद में दाख की बारी का एक दृष्टांत सुनाया, जिसमें दाख की बारी इसराइल थी। यहाँ यशाया की पुस्तक में भविष्यद्वक्ता अश्शूरों द्वारा उत्तरी राज्य की निकट बंधुआई की चर्चा करता है और यहूदा राज्य के लिए बेबीलोन की बंधुआई में जाने की भविष्यवाणी करता है। मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु ने कहा कि बेबीलोन में 70 वर्ष बंधुआई रहने के बाद परमेश्वर ने उन्हें एक और अवसर दिया, परंतु परमेश्वर के पुत्र को अस्वीकार करने के कारण वे अत्यधिक गंभीर रूप से विसर्जित किए जाएंगे। आइए अब हम देखते हैं दाख की बारी का गीत। अध्याय 5 उसके 1 पद में लिखा है, अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। अपने प्रिय, यह प्रभु यीशु मसीह है। वह इसराइल का मसीहा और संसार का उद्धार करता है। अति उपजाऊ टीले पर, समस्या मिट्टी के साथ नहीं है, दाखलता के साथ है। पद 7 से स्पष्ट है कि दाख की बारी इसराइल है और यहूदा है। इसे कलीसिया समझने की भूल ना करें। हमें कल्पना करने की आवश्यकता भी नहीं है। मेरे मित्रों, परमेश्वर हमें फिर से न्यायालय में बुला रहा है कि हम इसराइल पर लगाए गए उसके आरोपों को सुने। इसराइल पर लगाए गए परमेश्वर के आरोप को सुनते ही आप स्वयं को दोषी मानेंगे। यशाया 5 अध्याय के 2 पद में लिखा है, उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्बद बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। परमेश्वर ने इसराइल को मिस्र से मुक्ति दिलाई और उन्हें प्रतिज्ञा के देश में लाया। उसने उन्हें धार्मिकता के फल लाने के लिए और अपने नाम का महिमान्वन करने के लिए वहां पर रखा था, परंतु वे बहुत बुरी तरह से विफल हुए। यशाया 5:3 पद में हम पढ़ते हैं, अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। परमेश्वर न्याय करने को कहता है। वह कहता है कि परमेश्वर और इसराइल के मध्य अंतर का मूल्यांकन किया जाए। स्पष्ट तो यह है कि आप क्या अपना जीवन देखकर परमेश्वर से शिकायत करने को उठ खड़े होते हैं। मैं स्वयं ही जानता हूं कि मैं कैसा मनुष्य हूं। मैं सोचता था कि परमेश्वर पक्षपाती है। एक दिन मुझे अवसर मिला कि मैं बीमार अवस्था में अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ध्यान दूं। परमेश्वर मेरे जीवन में गलत नहीं था, परंतु मैं गलत था। मुझे इसका सामना करना था। हमें इस मानसिकता से मुक्ति पाना है कि हम विशेष जन हैं। परमेश्वर हमारे साथ कभी भी निष्पक्ष व्यवहार नहीं करेगा। गलत तो हम हैं, परमेश्वर नहीं। इसलिए मुझे और आपको स्वयं को जांचने की आवश्यकता है, सुधारने की आवश्यकता है। यशाया 5:4 पद में हम पढ़ते हैं, मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए न किया हो। फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी। परमेश्वर कहता है कि उसने उनके लिए हर एक प्रबंध को किया कि वे धार्मिकता के फल लाएं। उसके उपरांत भी यदि वे चूक गए तो वह एक अत्यधिक गंभीर बात है। जी हाँ, आज भी जब हम अपने बच्चों से बड़ी बड़ी उम्मीदें करते हैं, उनके लिए खर्च करते हैं और जब वो परिणाम हमें ठीक से नहीं देते हैं तब हम भी दुखित होते हैं। यही हाल परमेश्वर का इसराइलियों के साथ था। यशाया 5:5-6 पद में लिखा है, अब मैं तुमको बताता हूं कि अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए और उसकी दीवार को ढहा दूंगा कि वह रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह न तो फिर छांटी और न खोदी जाएगी और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाए। मेरे मित्रों, यह दोनों राज्यों की भावी बंधुआई की भविष्यवाणी है, यहूदा और इसराइल की। 500 वर्षों से परमेश्वर ने संसार के महान राष्ट्रों को 3 महाद्वीपों के सेतु से दूर रखा था। उसने इसराइल के चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा बांध रखा था। यद्यपि परमेश्वर ने उन्हें अनेक बार दंड देने का विचार किया, परंतु उन्हें इसराइल को छूने की अनुमति नहीं दी। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी दाख की बारी हो, मैंने तुम्हें बाड़े के भीतर रखा हुआ है, परंतु अब मैं बाड़ा तोड़ दूंगा। पहले सीरिया, फिर अश्शूर, तब बेबीलोन सब इसराइल में आए और उसे उजाड़ दिया। आज हम देखते हैं कि इसराइल ने बहुत विकास कर लिया है, परंतु वे अब भी उजड़ी हुई दशा में ही हैं। परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया था। यशाया 5:7 पद में लिखा है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इसराइल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं, और उसने उनमें न्याय की आशा की परंतु अन्याय दिखाई पड़ा, उसने धर्म की आशा की परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। यहां आपको अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं कि भविष्यद्वक्ता किसकी बात कर रहा है। दाख की बारी इसराइल का प्रतीक थी और यह अति स्पष्ट है। उस दाख की बारी में परमेश्वर ने उसमें न्याय की आशा की परंतु अन्याय दिखाई पड़ा, उसने धर्म की आशा की परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। मेरे मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 6 हाय के बारे में। परमेश्वर एक बार फिर कहता है, यहां 6 हाय हैं। प्रत्येक हाय इसराइल के एक पाप का उल्लेख करती है जिसके लिए परमेश्वर उन्हें दंड देगा। यदि आप चाहें तो इसे अपने देश और अपने व्यक्तिगत जीवन से जोड़ सकते हैं, परंतु यह है वास्तव में इसराइल के लिए और उसमें पूरी भी हुई है, तथापि हम इसे अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं। आइए हम यशाया 5:8 पद को पढ़ें। हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। यह इसराइल का पहला पाप है। यह पाप क्या है? यह आंखों की लालसा या अधिक स्पष्ट कहें तो लालच है। कुलुसियों की पत्री 3:5 में लिखा है, इसलिए अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ मूर्ति पूजा है। अकिंचन मानव के ऊपर बड़ा व्याथा है। इसराइल में ऐसे ही हो रहा था। मनुष्य को निचोड़ा जा रहा था। धन जमा करने के लिए यह सब कुछ हो रहा था। अधिक से अधिक धन संपत्ति एकत्र करने की लालसा के कारण यह सब किया जा रहा था। परमेश्वर इन सब के बारे में न्याय करेगा। यशाया के युग में इसराइल में खेती बाड़ी की जाती थी। कुछ लोगों के बड़े बड़े खेत थे। बड़े बड़े कृषि फार्म के स्वामी छोटे किसानों का शोषण करते थे, जैसा आज हम कभी कभी देखते हैं, केवल इसलिए कि उनका ही लाभ हो और बहुत पैसा आए। आप जिस बात में अपना जी जान लगा देते हैं वही आपका धर्म हो जाता है। आज भी अनेक जन हैं जो लालसा की वेदी पर पूजा कर रहे हैं। लालसा एक तुच्छ देवता है। वह रुपये जैसा दिखता है। यह एक कारण था कि इसराइल का पतन हुआ और परमेश्वर ने उसे दंड दिया। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की अपेक्षा वे भूमि का खून चूस रहे थे। आज हम भी ऐसा ही करते हैं। हमारा संसार संसाधनों से खाली हो रहा है। हम तेल या अन्य किसी भी ऊर्जा के लिए प्रकृति को चूस रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य लोभी है। मनुष्य के लोभ के कारण पृथ्वी खाली हो रही है। यह परमेश्वर का दंड है मनुष्य के ऊपर में, और यही कारण है कि आज मनुष्य अपने जीवन में सब कुछ होते हुए भी शांति का जीवन नहीं जी पाता है। यशाया 5:9-10 में हम पढ़ते हैं, सेनाओं के यहोवा ने मेरे सुनते कहा है, निश्चय बहुत से घर सुनसान हो जाएंगे और बड़े बड़े और सुंदर घर निर्जन हो जाएंगे, क्योंकि 10 बीघे की दाख की बारिश से एक ही बत दाख मधु मिलेगा और होमेर भर के बीज से एक ही एपा अन्न उत्पन्न होगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर कहता है कि उनके भूमि विस्तार से कुछ भी नहीं होगा। उनकी उपज नहीं बढ़ेगी। वहां सूखा पड़ेगा जिसके कारण उनकी उपज नष्ट हो जाएगी। भूमि का क्षेत्रफल बढ़ा लेने से विपुल पैदावार की लालसा फलवंत नहीं होगी। हमारी पृथ्वी संसाधनों से खाली हो रही है। तेल भी समाप्त हो रहा है। भूमि की उपज क्षमता घटती जा रही है। पर्यावरण एक महत्वपूर्ण विषय है। प्रदूषण से अधिकांश पृथ्वी का नाश हो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा यह ग्रह उजाड़ हो जाएगा। ईंधन भी घटता जा रहा है। यदि आपको यात्रा करनी है तो शीघ्रता करें, नहीं तो ईंधन समाप्त हो जाएगा। जब तक हम जीवित हैं तब तक तो ऐसा नहीं होगा, परंतु वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे जीते जी ऐसा हो सकता है। इसराइल के लिए यह परमेश्वर के दंड की घोषणा थी। मेरे मित्रों, क्या आप चाहते हैं कि आप इस प्रकार के कष्टमय जीवन को जिए, या आप चाहते हैं कि आप कष्टों का सामना करें? यदि नहीं, तो आइए हम सब मिलकर के परमेश्वर के उन दानों को स्वीकार करें, परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताएं, ताकि हम इस प्रकार के भयानक दंड से बच जाएं जो उसने इसराइलियों को दिया था। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मुझे आशा है कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था, तेरे सन्मुख आने के लाया मैं कदापि योग्य न था। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था, तेरे सन्मुख आने सहारा बना अपने पास मुझे बुलाया। इसलिए मसीहा होठों से अपनी स्तुति तेरी करूंगा। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह। मेरे श्राप को तूने हटा कर खुद श्रापित बना मसीह। तेरे